الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، مثل چند دنوں سے ان 7 لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ یہ وہ 7 لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن کے یہ خاص مہمان ہوں گے۔ اربوں خربوں لوگ دھوپ میں پریشان ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہ 7 اللہ کے ایسے مقرب ہوں گے کہ اللہ صرف انہیں سایہ نہیں دیں گے، اپنے مبارک عرش کا سایہ، یعنی عزت اور تکریم کی بھی کیا انتہا ہوگی اس جلال والے دن، پریشانی والے دن۔ کچھ اعمال کرنے والے ایسے ہوں گے کہ اس دن بھی عزتیں ان کو مل رہی ہوں گی۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے تذکرہ کیا اس شخص کا کہ جو صدقہ ایسے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی، یعنی جس نے چھپ کے لوگوں کی مدد کی، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ آج کی مجلس میں ایک اور خوش قسمت شخص کا تذکرہ جو حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت اسے بھی یہ نعمت عطا فرمائیں گے، اور یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اس کو کسی خوبصورت ذی وجاہت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس نے اس دعوت کے مقابلے میں کہا انی اخاف اللہ، یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے، مجھے یہ نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، بلکہ اس نے سچی بات کہی کہ غلط کام میں کرنا چاہتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو مرد جو ہے اس کے اندر عورت کی لالچ رکھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے عورتیں پسند ہی نہیں، غلط کہہ رہا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں نیکی میں اتنے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میرے دل میں عورت کے لیے جگہ ہی نہیں رہی، یہ ممکن نہیں ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ اپنی نگاہ بھی اٹھانی نہیں اور وقت تک۔ نگاہ نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دور رہنا ہے، بچنا ہے۔ یعنی کوئی کسی قسم کی قربت نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسے۔ اور پھر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ، یا تو ہوتا نا کہ چلو قرآن پاک میں نہیں ہوتا تذکرہ، حدیث پاک میں ہوتا کہ اور چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ ہے کیسی چیزیں یہ بھی کر لینا بھائی، یہ نہیں، اللہ نے اس کو بہت اہمیت دی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومن مردوں سے کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پھر اہمیت کا یہ عالم کہ عورتوں سے بھی کہا کل المؤمنات یغضضن من ابصارن، عورتوں بھی کہا تم بھی ادھر رہو، مردوں کو تم بھی ادھر رہو، دور دور رہو۔ تو جو جتنی بھی توجہ کر لے، قریب ہونے کی کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ جو قریب ہو رہا ہے، چاہے رشتہ دار عورتیں ہیں، چاہے جاننے والی ہیں، چاہے کام پہ ہیں، چاہے گناہ ہی ہے، مجبوری میں انسان گناہ کر رہا ہے، اس کو نیکی نہ سمجھے۔ उसको सही चीज ना समझे। इससे बढ़ के और क्या बात होती हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में यह फरमाया कि औरत की आवाज भी नरम नहीं होती है। वला तगज़ाना बिल कौल, औरतों को हुक्म फरमाया, और कौन सी औरतों को हुक्म फरमाया ये भी सोच रहे हैं। अल्लाह अकबर, साहबियात को हुक्म फरमा रहे हैं जो पाकीजा होने में सबसे, कायनात की सबसे पाकीजा खवातीन। वला तगज़ाना, बिल्कुल तुम अपनी आवाजों को नरम ना करो। فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, कि वो शख्स लालच करेगा जिसके दिल में मर्ज होगा। तो अब वो शख्स साहबियात को जब ये फरमा रहे हैं तो वो शख्स कौन है जो लालच करने वाला है? अल्लाह अकबर। फिर बाकी पीछे क्या बचता है? हम क्या कहें कि नहीं जी, लंबी लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं, मसला ही कोई नहीं है। हाँ, तो जिसने जन्नत वाली जिंदगी गुजारनी है, जरा भी इस धोखे में न आए कि जी मेरे ऊपर औरतों का कोई असर नहीं होता। इस धोखे में ना आए कि जी थोड़ी बहुत गुफ्तगू बातचीत करने से कोई असर नहीं होता। यहां बंदा फंसता है, बड़े बड़े फंस जाते हैं। किताबों में तो लाखों लोगों के शेख को अल्लाह ने बसा दिया, बुजुर्गों के वाकयात में से हजरत अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। तो इसलिए अकलमंदी, शरीयत की पैरवी यही है कि किसी तरह से शैतान को ये मौका ना दे कि वो आपके जहन को समझाए कि नहीं जी इतना तो होता है, आज का माहौल ऐसा है। हम तो आपको ये कहते हैं, माहौल ऐसा, कारोबारी जरूरत है, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी भी तो रखनी है। तो हर तरह से शैतान, और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हर बंदे का शैतान उसकी तरह का ही होता है। आलिम का शैतान आलिम और मुफ्ती का शैतान मुफ्ती है। उसके जहन में डालता है कि रिश्तेदारी रखना भी तो एक नेकी का काम है। इसलिए गुफ्तगू खानदान के अंदर खवातीन से कोई मसला नहीं। इस तरह की बातें इंसान को परेशान करती। एक बड़े मियाँ 70 साल की उम्र होगी, अपने शेख के पास आते हैं और आके अर्ज करते हैं कि हजरत करीबी रिश्तेदार की एक खातून फौत हो गई है। तो बुजुर्गों ने जब ये बात सुनी तो कहा जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी रिश्तेदार फौत हुई है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। उन्होंने कहा जी हजरत फौत हो गई है, आज दिल सुकून में आया है। हजरत ने कहा कि भाई तेरा दिल सुकून में, घर के अंदर या रिश्तेदार की कोई औरत अगर फौत हुई तो दिल कैसे सुकून में आया? अगर 40-45 साल की साल से उसको दिल में लेके बैठा हुआ हूं कि रिश्तेदार की औरत है, शादी कहीं और हुई भी है, मगर क्योंकि पर्दा नहीं है, गुफ्तगू होती है, तो बस वो दिल में बसी हुई, और वो ऐसी कि दिन रात दिल में बसी हुई है। तो आज अब उस दुनिया से चली गई है तो अब दिल सुकून में आ। तो मर्द का यही हाल है कि ये लालच कभी खत्म नहीं हो सकती। 70 साल का हो जाएगा, 80 साल का हो जाएगा, ये मशीनरी अल्लाह ने बनाई है जिसको इंसान कहते हैं, और इंसान ऐसा ही है। तो इस जो अल्लाह ने एक हद रख दी है मर्दों और औरत के दरमियान, अगर उससे आगे बढ़ेगा तो फंसेगा, अपनी जिंदगी भी खराब करेगा, आखिरत भी खराब करेगा। ये जो हदीस में तस्कर आया इस शख्स का कि जिसको औरत ने दावत दी, ये इसलिए उसको अर्श का साया मिला कि अब ये उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि औरत को बिल्कुल फ्री एक्सेस है उस बंदे के पास। यानी वो उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है ना, गुफ्तगू चल रही है, वो क्या है वो, यानी इस पोजीशन पे वो है कि ऐसा नहीं कि दूर दूर है मामला, रिलेशनशिप कायम हुआ हुआ है, और वो ये कह रही है कि जी आगो ना करते हैं। और इस पॉइंट से वापस होना बड़ा मुश्किल है, पीछे वाले पॉइंटों से वापस होना बड़ा मुश्किल है, इस पॉइंट से तो वापस होना बहुत मुश्किल तरीन काम है, कि जहां जान पहचान है, दोस्ती हुई भी है, वरना औरत कोई है कि अनजान बंदे को कह दे जी आज मैंने गुनाह करना है तेरे साथ, और वो ऐसी कोई रोड वाली औरत नहीं, हदीस पाक में अल्फाज था जी वजाहत औरत, इज्जतदार औरत है, तो इज्जतदार औरत तो ये उस वक्त कहेगी जब दोस्ती खूब हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके जब उसने उसको पीछे कर दिया इन्नी अखाफुल्लाह, तो उसने फिर ये बड़ा कमाल वाला काम किया है। शरीयत ये बता दी कि इस पॉइंट पे पहुंचना नहीं चाहिए मामला, न देखो न बात करो, औरतों को भी कहा तुम नरम गुफ्तगू बिल्कुल ना करो, मर्दों से कहा कि जी इनसे कोई अगर जरूरत की कोई चीज लेनी देनी भी है तो सहाबा कराम को फरमाया फस अलहुन्ना मिन वराई हिजाब, आमने सामने नहीं। और जिन लोगों ने अकल के ऊपर बुनियाद रखी कि नहीं जी इसमें क्या होता है, उन माशरों का हाल देख लें, न घर बचा है, न औलाद बची है, न वालदैन बची है, न बीवी बची है, जिंदगी अकेले ही गुजरती है, जिंदगी भी आग है और आगे भी आग है, इसलिए घर के अंदर थोड़ी बहुत चिपकलिश जो हो जाती है इससे परेशान ना हो। हमारे एक जानने वाले अमेरिका से आए वापस यहाँ पे, उनके किसी जानने वाले आके उनको कहा, वैसे दोस्तियां होती है ना, तो किसी दोस्त ने आके उनसे कहा कि भाई बेगम में और वालदा में लड़ाई बड़ी होती है, उन्होंने आके से कहा अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, अमेरिका से आ रहा हूं, वहां ना बेगम किसी के पास होती है ना वालदा किसी के पास होती है, तो ये लड़ाई हो रही है ये अल्लाह की रहमत है, तो ये अल्लाह ने एक बेहतरीन हमें तरीका बताया है पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का, मोहब्बतों वाली जिंदगी गुजारने का, बुढ़ापे के अंदर अकेले ना रहने का और सड़ सड़ के ना मरने का। तो जितने भी अमीर हो जाएं वो मरते सड़ सड़ के ही हैं। अल्लाह, बयान लंबा हो गया मगर आखिरी बात, हमारे एक जानने वाले बड़े आलिम हैं, वो स्वीडन तशरीफ ले गए, उनको किसी अपने दोस्त ने तो बुलाया था कि हमारे यहाँ मस्जिद बनी है आप यहाँ पे बयान फरमाएं, वो तो चले गए वो वहां, तो मस्जिद से घर जाते थे तो रास्ते में एक घर होता था, उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता था, अब हर रोज उसको बाहर बैठा हुआ यूं देख के तो उन बुजुर्गों ने पूछ लिया कि भाई ये कौन है, उन्होंने कहा जिस घर में अकेले रहता है, और अक्सर बूढ़े अकेले ही रहते हैं, या तो अकेले रहते हैं और अगर मिलके रहते हैं तो सारे बूढ़े एक साथ मिलके रहते हैं ओल्ड हाउस में, क्योंकि अक्सर शादियां नहीं होती हैं या शादियां खराब हो जाती हैं अक्सर, और बच्चे तो 18 साल के बाद किसी वालदेन से पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, सबका जहन बना हुआ है 18 साल के बाद बच्चे साथ नहीं रहेंगे, 18 साल के बाद जो बच्चे वालदेन के साथ रहते हैं वालदेन उनको रेंट चार्ज करते हैं वहां पे, सुभान अल्लाह, ये भी अजीबो गरीब बात है, और ये सारी इसको बेवकूफियां ही कहेंगे, ये सारी बेवकूफियां क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को नहीं देखा अपनी अकल को देखा, क्योंकि 18 साल से बड़ा हुआ है तो अपनी रहाइश खुद देखे, बीवी के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे खत्म, बल्कि उन्होंने कहा जी बीवी रखने की जरूरत ही क्या है, बीवी ने भी सोचा कि बस ठीक है ना मैं अब काम कर सकती हूँ तो शौहर की सुनने की जरूरत क्या है, हर चीज उल्टी, मतलब हर चीज अपने जहन से चल रही है, तो बहरहाल वो बड़े मियाँ हर रोज बैठा हुआ होता था बूढ़ा, तो ये बुजुर्ग जो यहाँ से गए उन्होंने कहा जी ये कौन है, जी बूढ़ा है अकेला रहता है इस घर में, अब वो बुजुर्ग हर रोज बयान करते मस्जिद में चल के वापस घर जाते, बूढ़ा हर रोज ही नजर आता, तो वो जो मेजबान थे उन बुजुर्गों ने वैसे ही कहा, कि ये तो किसी दिन मरा हुआ पड़ा होगा तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह की शान, 4-5 दिन वो बुजुर्ग नजर नहीं आए, और ये बुजुर्ग फरमाते कि हम करीब से गुजरते हमें बू आती, और किसी और नेबर ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस को पता चला कि जी 4-5 दिन से फौत हुआ अंदर पड़ा हुआ है, और लाश में से बू की वजह से करीबी वालों ने फोन पुलिस को किया तब पता चला कि जी फौत हो गया है। और सारी इन चीजों की बुनियाद कि इंसान जो शरई रास्ता है अपनी जरूरत का उसको पूरा करने की बजाय गलत रास्तों पे निकल जाता है। अल्लाह ताला हमें निगाहों की हिफाजत और अपने खानदान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا فاهما وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم برحمتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.